एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी और मानसिक स्वास्थ्य की समझ पर गहरा असर डाला है। ये किताब है डॉक्टर बेसिल वैंडरकॉल्क की द बॉडी कीप्स द स्कोर, ब्रेन माइंड एंड बॉडी इन द हीलिंग ऑफ ट्रॉमा।
बिल्कुल, और ये किताब सिर्फ क्या कहते हैं मनोविज्ञानिकों या डॉक्टरों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए है जो समझना चाहता है कि मुश्किल दर्दनाक अनुभव हमारे अंदर कैसे कैसे बस जाते हैं और क्यों कभी कभी उनसे उभरना इतना मुश्किल लगता है।
हाँ, और आज के समय में तो ये और भी जरूरी हो गया है ना। हम सब तनाव, चिंता, इन सब से जूझ रहे हैं, तो ये समझना कि गहरा आघात ट्रॉमा का असर कितना कितना शारीरिक हो सकता है, ये जानना जरूरी है।
सही कहा। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ किसी एक बड़ी घटना जैसे कोई युद्ध या दुर्घटना के बारे में नहीं है। किताब बताती है कि बचपन की अनदेखी या लंबे समय तक चलने वाला तनाव भी हमारे शरीर और दिमाग पर वैसी ही छाप छोड़ सकता है।
हाँ, इसने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया है ट्रॉमा को देखने का। ये सिर्फ दिमाग की परेशानी नहीं, ये एक शारीरिक अनुभव है।
बिल्कुल, और यहीं से उम्मीद भी जगती है, क्योंकि अगर शरीर प्रभावित होता है तो शरीर के जरिए हीलिंग भी संभव है।
सही, ये तो एक तरह से अपने ही शरीर और मन को समझने की चाबी जैसी लगती है।
हाँ, तो चलिए इस ज्ञान यात्रा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस व्यक्ति से जिन्होंने अपना जीवन इसी विषय को दिया है, लेखक डॉक्टर बेसिल वैंडरकॉल्क। देखिए, डॉक्टर वैंडरकॉल्क कोई साधारण मनोचिकित्सक नहीं है, वो एक डच अमेरिकी डॉक्टर हैं, शोधकर्ता हैं, शिक्षक हैं, और दुनिया भर में उन्हें ट्रॉमैटिक स्ट्रेस यानी आघात संबंधी तनाव के क्षेत्र में एक लीडर माना जाता है।
और उनका अनुभव 4 दशकों से भी ज्यादा का।
हाँ, सोचिए जरा, इतने लंबे समय तक उन्होंने उन लोगों के साथ काम किया है जिनके जीवन ट्रॉमा से बिल्कुल बिखर से गए थे।
4 दशक, ये तो कमाल का अनुभव है। और जैसा आपने बताया, उनका काम सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने वियतनाम युद्ध के सैनिकों से लेकर बचपन में दुर्व्यवहार या उपेक्षा झेल चुके लोगों तक, हर तरह के ट्रॉमा सर्वाइवर्स के साथ काम किया।
बिल्कुल, और सिर्फ इलाज ही नहीं, वो उन शुरुआती शोधकर्ताओं में से थे जिन्होंने ये समझने की कोशिश की कि ट्रॉमा असल में दिमाग पर क्या करता है।
अच्छा,
उन्होंने PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को एक औपचारिक निदान के तौर पर स्थापित करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई।
और सबसे खास बात ये कि उन्होंने ब्रेन स्कैनिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया ये दिखाने के लिए कि ट्रॉमा के दौरान दिमाग के कौन से हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं और कौन से बंद हो जाते हैं।
वाह, ये तो बिल्कुल अंदर तक जाकर देखना हुआ। हाँ, और वो हमेशा पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नए इलाजों को आजमाने के हिमायती रहे हैं, खासकर वो तरीके जो शरीर पर ध्यान देते हैं, जैसे योग, EMDR, न्यूरोफीडबैक।
अच्छा, तो ये खुलापन ही उनके काम को इतना खास बनाता है।
बिल्कुल, इसी वजह से उनका काम इतना अनूठा और प्रभावशाली है।
तो ये हुआ कि ये किताब सिर्फ सिद्धांतों का पुलिंदा नहीं है, ये उनके दशकों के अनुभव, हजारों मरीजों की कहानियों और एकदम लेटेस्ट वैज्ञानिक शोध का निचोड़ है।
सही कहा, ये इसे ट्रॉमा को समझने के लिए एक बेहद जरूरी और विश्वसनीय स्रोत बनाता है।
चलिए अब किताब के मूल विचार पर आते हैं। ये जो टाइटल है बॉडी कीप्स द स्कोर, इसका असल में मतलब क्या है? तो ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है, इसका सबसे बड़ा आइडिया क्या है?
मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि ट्रॉमा सिर्फ एक बुरी याद नहीं है जिसे हम भूलना चाहते हैं, ये उससे कई ज्यादा है। हाँ, और यही इस किताब का केंद्रीय तर्क है, और ये वाकई क्रांतिकारी है। डॉक्टर वैंडरकॉल्क से कहते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ हमारे मन में घटी एक घटना नहीं है, बल्कि ये एक गहरा शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल अनुभव है। ये हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ देता है। आसान शब्दों में कहें तो दर्दनाक अनुभव हमारे दुनिया को देखने, महसूस करने, दूसरों से जुड़ने और यहाँ तक कि अपनी शारीरिक संवेदनाओं को संभालने के तरीके को भी जड़ से बदल देते हैं।
तो इसको मतलब ये हुआ कि वो जो हम अक्सर सोचते हैं ना कि बस इसके बारे में बात करो और सब ठीक हो जाएगा,
हाँ,
वो ट्रॉमा के मामले में शायद अधूरा सच है।
बिल्कुल सही। सिर्फ दिमागी स्तर पर समझने या बात करने से वो शारीरिक छाप नहीं मिटती।
हाँ,
यही किताब का सबसे महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा विवादास्पद बिंदु भी है। लेखक का तर्क है कि पारंपरिक टॉक थेरेपी या दवाएं अक्सर अपर्याप्त होती हैं, क्योंकि वे ट्रॉमा के शारीरिक आधार को, उस गहरे डर को जो नर्वस सिस्टम में बस गया है, उसे सीधे संबोधित नहीं करती।
तो फिर रास्ता क्या है?
रास्ता है असली और स्थायी रिकवरी के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण।
बॉटम अप, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ?
इसे ऐसे समझिए, टॉप डाउन तरीके हमारे सोचने वाले दिमाग, मतलब तार्किक मस्तिष्क पर काम करते हैं, जैसे बात करके समझना।
अच्छा।
लेकिन ट्रॉमा अक्सर हमारे दिमाग के ज्यादा पुराने भावनात्मक और सर्वाइवल हिस्सों को, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम, इनको हाईजैक कर लेता है।
हाईजैक मतलब वो कंट्रोल ले लेते हैं।
हाँ बिल्कुल। बॉटम अप तरीके सीधे इन गहरे शारीरिक स्तरों पर काम करते हैं, जैसे सांस लेने के व्यायाम, योग, मूवमेंट या EMDR जैसी थेरेपीज। ये पहले शरीर के अलार्म सिस्टम को शांत करते हैं ताकि हमारा सोचने वाला दिमाग वापस कंट्रोल में आ सके।
अच्छा, तो पहले शरीर को शांत करो, फिर दिमाग अपने आप पटरी पर आएगा। समझ गया।
बिल्कुल। तो किताब हमें पहले ये समझाती है कि ट्रॉमा कैसे हमारे सिस्टम को बदलता है, और फिर इन बॉटम अप रास्तों से हीलिंग की उम्मीद दिखाती है।
ठीक है, तो ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है, पहले समस्या की जड़ तक, फिर समाधान की ओर। किताब 5 हिस्सों में बटी है। चलिए इन हिस्सों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हर पड़ाव पर क्या खास है। पहला भाग है ट्रॉमा की पुनर्खोज। यहाँ से कहानी शुरू होती है।
हाँ, इस पहले हिस्से में लेखक हमें ट्रॉमा को समझने के इतिहास मिले जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे लंबे समय तक इसे नजरअंदाज किया गया, चाहे वो महिलाओं में हिस्टीरिया का लेबल हो या युद्ध से लौटे सैनिकों का शेल शॉक। समाज और चिकित्सा जगत अक्सर इसे समझने में नाकाम रहा। डॉक्टर वैन डेर कोल्क अपने शुरुआती अनुभव साझा करते हैं, खासकर वियतनाम युद्ध के दिग्गजों के साथ काम करने के। उन्हें एहसास हुआ कि इन सैनिकों के फ्लैशबैक सिर्फ बुरी यादें नहीं थीं, वे सचमुच उस घटना को वर्तमान में दोबारा जी रहे थे। उनकी धड़कनें तेज हो जाती थी, पसीना आता था, वो वैसे ही डर जाते थे जैसे घटना के समय हुए थे।
बाप रे, मतलब वो सिर्फ सोच नहीं रहे थे, उनका शरीर रिएक्ट कर रहा था।
बिल्कुल, ये सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में हो रहा था।
और यहीं पर वो ट्रियून ब्रेन यानी त्रिस्तरीय मस्तिष्क की अवधारणा लाते हैं ना।
हाँ,
हमारा तार्किक मस्तिष्क, भावनात्मक मस्तिष्क और वो सबसे पुराना सरीसृप मस्तिष्क।
हाँ, नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और रेप्टिलियन ब्रेन।
ये समझना क्यों जरूरी है?
ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रॉमा के दौरान हमारा तार्किक मस्तिष्क, जो सोच समझकर फैसले लेता है, वो एक तरह से ऑफलाइन हो जाता है।
ऑफलाइन मतलब काम करना बंद कर देता है।
हाँ कह सकते हैं। और कमान हमारे भावनात्मक और सर्वाइवल ब्रेन के हाथ में चली जाती है, जिनका काम सिर्फ खतरा भांपना और बचाव करना है। इसलिए ट्रॉमा की स्थिति में व्यक्ति तर्क से नहीं, बल्कि अपनी सहज बचाव प्रतिक्रियाओं, लड़ो भागो या जम जाओ, फाइट फ्लाइट फ्रीज, इनसे संचालित होता है।
अच्छा, तो ये जानने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि क्यों ट्रॉमा में फंसे लोग कभी कभी अजीब या अतार्किक व्यवहार कर सकते हैं।
बिल्कुल सही।
समझ गया। तो पहला भाग हमें ये दिखाता है कि ट्रॉमा सिर्फ एक मानसिक चीज नहीं है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ट्रॉमा में आपका मस्तिष्क। ये तो और भी गहरा लगता है, न्यूरोबायोलॉजी की बात करता है।
हाँ, ये हिस्सा थोड़ा तकनीकी जरूर है, पर बेहद दिलचस्प। यहाँ लेखक बताते हैं कि ट्रॉमा असल में दिमाग के हार्डवेयर को कैसे बदल देता है। वो कुछ मुख्य खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं।
खिलाड़ी मतलब दिमाग के हिस्से?
हाँ बिल्कुल। पहला है एमिगडाला। इसे दिमाग का स्मोक डिटेक्टर या खतरे का सेंसर समझ सकते हैं।
स्मोक डिटेक्टर।
हाँ, ट्रॉमा के बाद ये अति संवेदनशील, मतलब हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये छोटे छोटे चीजों में भी खतरा देखने लगता है और बार बार झूठा अलार्म बजाता रहता है।
अच्छा, इसीलिए शायद ट्रॉमा सर्वाइवर्स अक्सर बहुत चौकन्ने या चिड़चिड़े रहते हैं।
बिल्कुल। फिर आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ये हिस्सा हमारी यादों को व्यवस्थित करता है, उन्हें समय और स्थान के संदर्भ में रखता है, जैसे ये याद रखना कि कोई घटना अतीत में हुई थी। ट्रॉमा हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचा सकता है, नतीजा दर्दनाक यादें ठीक से फाइल नहीं हो पाती, वो बिखरी हुई वर्तमान की तरह महसूस होती हैं, जैसे वो अभी भी घटित हो रही हों।
ओह, तो फ्लैशबैक इसी का नतीजा है?
हाँ, काफी हद तक। और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, MPFC। ये हमारे माथे के पीछे का हिस्सा है, हमारा कंट्रोल टावर।
कंट्रोल टावर?
हाँ, ये भावनाओं को नियंत्रित करता है, हमें सोचने, समझने, योजना बनाने और सही गलत में फर्क करने में मदद करता है। ट्रॉमा के तीव्र तनाव में ये MPFC ठीक से काम करना बंद कर देता है, ऑफलाइन हो जाता है।
तो व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, भावनाओं में बह जाता है। बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे दिमाग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही गड़बड़ा गया हो।
हाँ, कुछ वैसा ही। और इसमें डिसोसिएशन का भी जिक्र है।
हाँ, डिसोसिएशन, वो क्या होता है?
डिसोसिएशन एक तरह का बचाव तंत्र है। जब अनुभव बहुत ज्यादा दर्दनाक या असहनीय हो जाता है तो मन खुद को शरीर से या उस स्थिति से अलग कर लेता है। व्यक्ति सुन महसूस कर सकता है या ऐसा लग सकता है कि वो खुद को बाहर से देख रहा है या दुनिया असली नहीं लग रही।
ओह, ये उस पल में बचाने में मदद करता है, लेकिन बाद में?
हाँ, बाद में अगर ये आदत बन जाए तो व्यक्ति अपने शरीर, अपनी भावनाओं और यहाँ तक कि अपनी पहचान से भी कटा हुआ महसूस कर सकता है। ये दिमाग का एक तरीका है असहनीय दर्द से बचने का।
ये सब जानना वाकई आंखें खोलने वाला है। तीसरा भाग, बच्चों का मन, बचपन के ट्रॉमा पर केंद्रित है। ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है पढ़ने के लिए, है ना?
हाँ, ये हिस्सा बहुत संवेदनशील है और बहुत महत्वपूर्ण भी। ये बचपन में हुए ट्रॉमा, खासकर उन आघातों पर बात करता है जो बच्चों को उनके देखभाल करने वालों, माता पिता या करीबी रिश्तेदारों से मिलते हैं। इसे डेवलपमेंटल ट्रॉमा कहते हैं।
डेवलपमेंटल ट्रॉमा?
हाँ, यहाँ लेखक अटैचमेंट थ्योरी यानी जुड़ाव के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। हर बच्चे को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने माता पिता या मुख्य देखभाल करने वाले के साथ एक सुरक्षित और स्थिर जुड़ाव की जरूरत होती है।
लेकिन अगर वही लोग जिनसे सुरक्षा मिलनी चाहिए वही डर या उपेक्षा का स्रोत बन जाए तो?
बिल्कुल, यही समस्या खड़ी होती है। अगर बच्चा लगातार डर, अनदेखी या अस्थिरता के माहौल में पलता है तो वो अव्यवस्थित जुड़ाव विकसित कर सकता है।
अव्यवस्थित जुड़ाव?
हाँ, इसका मतलब है कि बच्चा अपने देखभाल करने वाले के पास जाना भी चाहता है सुरक्षा के लिए, लेकिन उनसे डरता भी है। ये विरोधाभास बच्चे के अंदर गहरे स्तर पर असुरक्षा, भ्रम और आत्म मूल्य में कमी पैदा करता है।
और इसका असर तो शायद जिंदगी भर रहता होगा।
बिल्कुल, रिश्तों में भरोसे की कमी, अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में कठिनाई और खुद को बेकार समझना। लेखक यहाँ तक सुझाव देते हैं कि ऐसे जटिल ट्रॉमा के लिए एक अलग निदान होना चाहिए, डेवलपमेंटल ट्रॉमा डिसऑर्डर।
ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर बचपन के इन अनुभवों के असर को ठीक से समझा नहीं जाता।
सही कहा। अब आते हैं चौथे भाग पर, ट्रॉमा का प्रभाव। ये दर्दनाक यादों की प्रकृति के बारे में है, ये सामान्य यादों से कैसे अलग होती हैं। ये एक और कमाल का इनसाइट है किताब का। सामान्य यादें एक कहानी की तरह होती हैं, शुरुआत, मध्य, अंत, हम उन्हें शब्दों में बयां कर सकते हैं।
हाँ।
लेकिन ट्रॉमा की यादें ऐसी नहीं होती, वो खंडित होती हैं, बिखरी हुई। वो अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि संवेदी छापों यानी सेंसरी इम्प्रिंट्स के रूप में संग्रहित होती हैं।
संवेदी छापे मतलब?
मतलब कोई धुंधली तस्वीर, एक आवाज, एक गंध या शरीर में अचानक उठने वाली कोई सनसनी, जैसे दिल का जोर से धड़कना या पेट में मरोड़ उठना।
अच्छा, इसलिए शायद उन्हें बयान करना इतना मुश्किल होता है।
हाँ बिल्कुल, और यहीं पर स्पीचलेस टेरर यानी अवाक आतंक की अवधारणा आती है।
अवाक आतंक?
हाँ, ब्रेन स्कैन से पता चला है कि जब कोई व्यक्ति ट्रॉमा के फ्लैशबैक का अनुभव करता है तो उसके मस्तिष्क का भाषा केंद्र, जिसे ब्रोका एरिया कहते हैं, वो निष्क्रिय हो जाता है, बंद हो जाता है एक तरह से।
क्या, भाषा केंद्र बंद हो जाता है?
हाँ, व्यक्ति सचमुच उस अनुभव को शब्दों में ढालने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए सिर्फ ये कहना कि इसके बारे में बात करो अक्सर काम नहीं करता, शब्द होते ही नहीं है।
बाप रे।
शरीर उस आतंक को महसूस कर रहा होता है लेकिन जुबान साथ नहीं देती। यहीं से किताब का शीर्षक सार्थक होता है, द बॉडी कीप्स द स्कोर। शरीर सचमुच स्कोर याद रखता है भले ही शब्द न हो।
वाह, ये तो सचमुच गहरा है। ब्रोका एरिया का बंद हो जाना ये समझाता है कि क्यों कई बार लोग अपने अनुभव बता नहीं पाते। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे उभरना संभव है?
हाँ।
यहीं पर पांचवा और अंतिम भाग आता है, रिकवरी के रास्ते। ये उम्मीद जगाता है,
नहीं छोड़ती बल्कि समाधान के कई रास्ते भी दिखाती है। ये हिस्सा उम्मीद और सशक्तिकरण का है। यहाँ लेखक टॉप डाउन सोच पर आधारित और बॉटम अप शरीर पर आधारित दोनों तरह के उपचारों की बात करते हैं, लेकिन जोर बॉटम अप पर ज्यादा है।
ठीक है, तो क्या है वो रास्ते?
पहला कदम हमेशा सुरक्षा स्थापित करना होता है, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करना। इसके बिना हीलिंग शुरू नहीं हो सकती।
सुरक्षा, हाँ ये तो बेसिक है।
इसमें अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना सीखना शामिल है, जैसे गहरी सांस लेने के व्यायाम या माइंडफुलनेस से। फिर टॉक थेरेपी की अपनी जगह है, खासकर कहानी को समझने, उसे एक मतलब देने में। लेकिन जैसा हमने देखा, ये अकेली काफी नहीं हो सकती, खासकर अगर शरीर अभी भी खतरे के मूड में है। यहाँ इंटरनल फैमिली सिस्टम्स IFS जैसे नए तरीके मदद कर सकते हैं, जो मन के अलग अलग हिस्सों को समझने और उनसे संवाद करने में मदद करते हैं।
मन के हिस्से जैसे?
जैसे डरा हुआ हिस्सा, गुस्से वाला हिस्सा, प्रोटेक्ट करने वाला हिस्सा, उनको समझना।
अच्छा।
और फिर आते हैं वो तरीके जो सीधे शरीर पे काम करते हैं।
हाँ।
जैसे EMDR, आई मूवमेंट डीसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ये एक दिलचस्प थेरेपी है।
EMDR, हाँ सुना है इसके बारे में।
इसमें आंखों की गति या अन्य तरह की द्विपक्षीय उत्तेजना, जैसे बारी बारी से घुटनों पर थपथपाना का उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि ये दिमाग को उन बिखरी हुई दर्दनाक यादों को संसाधित करने और उन्हें अतीत में सही जगह पर रखने में मदद करता है।
यादों को मिटाता नहीं, पर उनका असर कम कर देता है।
बिल्कुल, उनका भावनात्मक बोझ कम कर देता है। फिर है योग। किताब योग पर बहुत जोर देती है।
योग क्यों?
के अंदरूनी संकेतों को महसूस करना और समझना, धड़कन, सांस, तनाव, आराम, इन सबको। ट्रॉमा अक्सर हमें अपने शरीर से काट देता है। योग हमें धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से अपने शरीर से दोबारा जुड़ना, उसमें रहना और उसे अपना दोस्त बनाना सिखाता है।
ये सिर्फ आसन नहीं, अपने अंदर ध्यान देना है।
बिल्कुल। फिर है न्यूरोफीडबैक। ये एक हाईटेक तरीका है।
न्यूरोफीडबैक
ये कैसे काम करता है?
इसमें सिर पर सेंसर लगाकर मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स को मॉनिटर किया जाता है और व्यक्ति को रियल टाइम फीडबैक दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई गेम। इससे व्यक्ति सचेत रूप से अपनी ब्रेन वेव्स को नियंत्रित करना सीखता है, दिमाग को शांत और केंद्रित अवस्था में लाना सीखता है। ये एक तरह से दिमाग के लिए जिम जैसा है।
वाह, टेक्नोलॉजी का कमाल।
हाँ, और आखिर में लेखक समुदाय और कला के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि ट्रॉमा अक्सर रिश्तों में मिले घावों से जुड़ा होता है।
हाँ, इसलिए समूह चिकित्सा, थिएटर, डांस, गाना बजाना जैसी गतिविधियां लोगों को दोबारा सुरक्षित रूप से जुड़ने, अपनी आवाज खोजने और खुद को अभिव्यक्त करने में मदद कर सकती हैं। हीलिंग अकेले में नहीं होती।
सही कहा, जुड़ाव बहुत जरूरी है। तो ये सारे तरीके मिलकर एक ज्यादा संपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं हीलिंग की। सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि महसूस करना, हिलना डुलना, जुड़ना, ये सब जरूरी है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी विस्तृत चर्चा से कुछ मुख्य संदेश या थीम क्या उभर कर आते हैं, मतलब निचोड़ क्या है?
हाँ, अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। पहला और सबसे बड़ा संदेश, ट्रॉमा सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं, ये शारीरिक भी है। दर्द हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी मांसपेशियों में, हमारी सांस लेने के तरीके में बस जाता है। इसलिए इलाज में शरीर को शामिल करना जरूरी है।
शरीर को शामिल करना जरूरी है।
दूसरा, अतीत का अत्याचार ट्रॉमा समय की धारणा को तोड़ देता है। सर्वाइवर के लिए अतीत अक्सर वर्तमान पर हावी रहता है। हीलिंग का लक्ष्य अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उसे उसकी सही जगह यानी अतीत में रखना है, ताकि वर्तमान जिया जा सके।
अतीत को अतीत में रखना।
तीसरा, सिर्फ संज्ञानात्मक तरीकों की सीमाएं, सिर्फ बात करना, समझना या दवा लेना अक्सर काफी नहीं होता। ये तरीके ट्रॉमा के शारीरिक आधार को, उस डर को जो सर्वाइवल ब्रेन में कैद है, उसे नहीं छू पाते।
आप अपने अलार्म सिस्टम को सिर्फ तर्क से बंद नहीं कर सकते।
बिल्कुल। चौथा, बॉटम अप हीलिंग का महत्व। योग, सांस लेना, EMDR, मूवमेंट, ये तरीके पहले शरीर को शांत करते हैं, उसे सुरक्षित महसूस कराते हैं। जब शरीर शांत होता है, तभी हमारा तार्किक मस्तिष्क ठीक से काम कर पाता है। हीलिंग नीचे से ऊपर की ओर जाती है,
शरीर से मन की ओर।
हाँ, और पांचवां और बहुत जरूरी, आशा, न्यूरोप्लास्टी और उपचार की क्षमता। इन सब चुनौतियों के बावजूद किताब का संदेश निराशाजनक नहीं है। न्यूरोप्लास्टी का विज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है,
दिमाग बदल सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ,
सही मदद और तरीकों से लोग सुरक्षित महसूस करना सीख सकते हैं, अपने शरीर से दोस्ती कर सकते हैं और एक भरा पूरा जीवन जी सकते हैं। सुरक्षा और जुड़ाव, सेफ्टी एंड कनेक्शन, ठीक होने की कुंजी हैं।
ये संदेश वाकई शक्तिशाली है और किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जो दिमाग में अटक जाती हैं। अगर हम कुछ मुख्य विचारों को अपने शब्दों में पकड़ने की कोशिश करें।
जरूर, पहला विचार शायद ये होगा, ट्रॉमा सिर्फ अतीत में हुई घटना नहीं है, ये उस अनुभव की छाप है जो मन, मस्तिष्क और शरीर पर रह जाती है। ये छाप वर्तमान में जीने के तरीके को लगातार प्रभावित करती है।
हाँ, मतलब घटना खत्म होने के बाद भी संघर्ष जारी रहता है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ही बदल गया है। ये हमें विक्टिम ब्लेमिंग से बचाता है।
बिल्कुल। दूसरा विचार, ठीक होने की चुनौती सिर्फ अतीत का सामना करना नहीं है, बल्कि वर्तमान में पूरी तरह जीना सीखना है। जब तक आप वास्तविकता से लड़ते रहेंगे, आप अतीत के कैदी रहेंगे।
ये बहुत गहरा है। लक्ष्य भूलना नहीं, बल्कि अनुभव को एकीकृत करना है, उसे कहानी का हिस्सा बनाना है, पर उसे कहानी पर हावी नहीं होने देना, वर्तमान में जीना।
सही। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, शारीरिक पहलू से जुड़ा। आप तब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते जब तक आप अपने शरीर से दोस्ती करना नहीं सीखते, अपनी त्वचा में सुरक्षित महसूस करना। शरीर जो कभी आतंक और दर्द का स्थल था, उसे सुरक्षा और यहां तक कि आनंद का स्रोत बनना चाहिए।
शरीर को दुश्मन नहीं, साथी बनाना है। योग, माइंडफुलनेस, डांस, इन सब की जरूरत है।
बिल्कुल। और चौथा, न्यूरोसाइंस शोध दिखाता है कि हम जैसा महसूस करते हैं उसे बदलने का एकमात्र तरीका है अपने आंतरिक अनुभव के प्रति जागरूक होना और जो हमारे अंदर चल रहा है उसे दोस्ती करना सीखना।
अपने अंदर झांकना, डर, बेचैनी, उनसे भागने के बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना, यहीं से बदलाव शुरू होता है।
हाँ, इंटरोसेप्शन और माइंडफुलनेस,
ये विचार सिर्फ किताबी नहीं लगते, इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन से सीधा संबंध है। इन सब बातों का हमारी जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है, कैसे लागू करें इन्हें?
बहुत गहरा मतलब हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर देखिए, अगर कोई लगातार चिंता, डिप्रेशन, बेवजह के गुस्से या शारीरिक दर्द से जूझ रहा है, तो ये किताब उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकती है कि कहीं इसके पीछे कोई अनसुलझा ट्रॉमा तो नहीं।
हाँ, ये शर्म और खुद को दोष देने वाली भावना को कम कर सकता।
बिल्कुल। और ये उन्हें सही तरह की मदद ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे EMDR या सोमैटिक थेरेपी, योग, ध्यान या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने जैसी छोटी आदतें भी अपने शरीर के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकती हैं।
और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए, डॉक्टर, थेरेपिस्ट,
उनके लिए ये एक ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड नजरिया अपनाने का आह्वान है। ये समझना कि मरीज के लक्षणों, चाहे वो मानसिक हों या शारीरिक, जैसे पुराना दर्द, फाइब्रोमायल्जिया, ऑटो इम्यून बीमारियाँ, इनके पीछे ट्रॉमा एक भूमिका निभा सकता है। सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय जड़ तक जाने की कोशिश करना।
और शिक्षकों और माता पिता के लिए, उनके लिए तो ये समझ बिल्कुल गेम चेंजर हो सकती है।
हाँ, जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, बहुत गुस्सा करता है या सबसे अलग थलग रहता है, उसे बुरा या बिगड़ा हुआ समझने के बजाय ये सोचना कि शायद उसका नर्वस सिस्टम डीरेग्यूलेटेड है, वो तनाव को संभाल नहीं पा रहा।
ऐसे बच्चे को सजा नहीं, बल्कि शांत होने में मदद, मतलब को-रेगुलेशन और सुरक्षा की जरूरत है।
बिल्कुल। और सामाजिक स्तर पर भी इसके बड़े निहितार्थ हैं। ये हमें अपराध, नशे की लत, घरेलू हिंसा और यहाँ तक कि गरीबी और असमानता जैसे मुद्दों को भी ट्रॉमा के लेंस से देखने में मदद करती है।
हाँ, बहुत से लोग जो इन चक्रों में फंसे हैं, वे खुद गंभीर ट्रॉमा के शिकार रहे होते हैं।
सही कहा। ये हमें सजा देने वाले सिस्टम से हटकर ऐसे समुदाय और नीतियां बनाने की ओर प्रेरित करता है जो सुरक्षा, जुड़ाव और उपचार को बढ़ावा दें, खासकर बच्चों के लिए, स्कूलों और परिवारों में।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि हम अक्सर अपने दिमाग और विचारों में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपने शरीर को उसको भूल ही जाते हैं। ये किताब याद दिलाती है कि हमारा शरीर सिर्फ दिमाग को ढोने वाला वाहन नहीं है, वो हमारे अनुभवों का, हमारी भावनाओं का, हमारे इतिहास का भंडार है। और उपचार के लिए हमें इस पूरे अस्तित्व, मन, मस्तिष्क और शरीर को एक साथ लाना होगा। शरीर से दोस्ती करनी होगी।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली और साथ ही सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाली बात है न्यूरोप्लास्टिक का विज्ञान। ये जानना कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है, हम नई चीजें सीख सकते हैं, यहाँ तक कि गहरे जख्मों के बाद भी सुरक्षित महसूस करना सीख सकते हैं, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ट्रॉमा की कहानियां मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन किताब का अंतिम संदेश निराशा का नहीं बल्कि संभावना और लचीलेपन का है। रिकवरी संभव है।
हाँ, ये किताब ट्रॉमा से जुड़े कलंक और भ्रम को तोड़ती है। ये सर्वाइवर्स को दोष देने के बजाय उन्हें समझने और सशक्त बनाने का काम करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अनुभव हमें परिभाषित नहीं करते, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे जीव विज्ञान और इतिहास का हिस्सा हैं।
बिल्कुल।
और सबसे जरूरी बात, ये उपचार के लिए एक एकीकृत मानवीय और आशाजनक नक्शा पेश करती है।
ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, अगर व्यक्ति का शरीर सब याद रखता है तो क्या समाज, समुदाय या राष्ट्रों की सामूहिक पीड़ा भी कहीं दर्ज होती होगी? ये सोचने वाली बात है।
हमारे इतिहास के आघात हमारी सामूहिक चेतना और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते होंगे, और अगर ऐसा है तो उस सामूहिक उपचार के रास्ते क्या हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।